नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने आतंकवाद को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर कराना में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.5% किया। नकद आरक्षी अनुपात में 100 आधार अंकों की कटौती। रिजर्व बैंक की कटौती की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में तेजी। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने अगले साल चुनाव कराने की घोषणा की और फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का मुकाबला लोरेंजो मुसेटी से जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज और देश का पहला केबल पुल आधारित अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 44,000 करोड़ रुपए की लागत की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कटरा में कहा कि अत्याधुनिक चेनाब ब्रिज जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है।
आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है।
श्री मोदी ने कहा कि चेनाब और अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे।
लोग फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चेनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।
पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा।
पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहाँ रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया।
श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित 2,000 से अधिक परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई थी। जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से भारत की विनिर्माण क्रांति में शामिल होने की अपील की। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और आत्मनिर्भरता पर चर्चा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठकर नव मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं।
केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा करते हुए दसवीं की छात्रा विन्नी कॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्य के जरिए जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिला है।
ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है और ये जो ट्रेन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है, इससे न केवल टूरिज्म बढ़ेगा उसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे एक नेशनल यूनिटी हमारी बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री ने कटरा में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी। यह रियासी जिले में पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन भी किया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, कटरा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से फोन पर बातचीत में उन्हें चुनाव में जीत पर बधाई दी। श्री मोदी ने क्रांसकस में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के शुभारंभ की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा जिससे समुदाय की वंचित महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा।
आज जब हमने पोर्टल लॉन्च किया तो इसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल और ये उम्मीद है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट का जो थीम के साथ काम कर रहे हैं। इसमें देश में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है आज तक जो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, आइडेंटिफाइड है, उसका आज से जितना मुतवालीस है उनको कहा गया कि पोर्टल पे अपलोड करना शुरू कर देंगे और 6 महीने का वक्त दिया है।
ये विशेष साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे 100.1 FM गोल्ड चैनल और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष के एक भाग के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ये साक्षात्कार हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। भारत ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये भारत के सभ्यतागत गौरव को पुनर्जीवित करने की कुंजी है।
पिछले एक दशक में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है। सरकार ने देश के राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि उनकी विरासतें राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर संरक्षित और सम्मानित की जा सकें। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे अभियानों के माध्यम से देश के लिए बलिदान देने वाली हस्तियों की उपलब्धियों को देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजनों द्वारा देश भर में मनाया गया। वहीं भारत की धरोहर स्मारकों जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और नया संसद भवन अब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम और महाकुंभ 2025 जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया जैसे आयोजन विविधता में एकता की भावना का भव्य उत्सव बने। वहीं बौद्ध सम्मेलन और सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व पर आयोजित वैश्विक कार्यक्रमों ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को और अधिक मजबूत किया है। योग भी एक वैश्विक अभियान बनकर उभरा है, जिससे भारत जन कल्याण का अंतर्राष्ट्रीय स्वर बन गया है। वहीं आयुर्वेद क्षेत्र भारत को समग्र स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बना रहा है। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। भारत के 43 विश्व धरोहर स्थल हैं और 62 स्थल संभावित सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जैसे आयोजन भारत की मीडिया और मनोरंजन प्रतिभा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत की संस्कृति अब न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी देखी और सम्मानित की जा रही है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक नीति में आज रेपो रेट में उम्मीद से अधिक 50 अंक की कटौती कर इसे 5.5% कर दिया। वर्ष 2025 में रेपो रेट में अब तक कुल 1% की कटौती हो चुकी है। बैंक ने बाजार में मौद्रिक तरलता को मजबूती देने के लिए नकद आरक्षी अनुपात CRR में भी 1% की कटौती की है। इस बीच उम्मीद से अधिक रेपो रेट और CRR में सकारात्मक बदलाव से शेयर बाजार में उत्साह रहा। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 747 अंक बढ़कर 82,189 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 252 अंक की बढ़त के साथ 25,003 के स्तर पर बंद हुआ। 10 ब्रिक्स देशों की संसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस महीने की 4 और 5 तारीख को ब्राजील के ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने अगले साल अप्रैल में चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि चुनाव आयोग उचित समय पर चुनावों के लिए एक विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर देश और विदेश स्थित सभी भारतीय नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। दिल्ली की एक अदालत ने आज 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहवर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से राणा के स्वास्थ्य के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के लोरेंजो मुसेती को 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के जैनिक सिनर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच आमने सामने होंगे। इसरो के गगनयान मिशन में शामिल वायुसेना के टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के XCM-4 मिशन के अंतर्गत कई बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भेजे जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने आतंकवाद को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.5% किया। नकद आरक्षण अनुपात में 100 आधार अंकों की कटौती। रिजर्व बैंक की कटौती की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में तेजी। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने अगले साल चुनाव कराने की घोषणा की और फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज ने लोरेंजो मुसेती को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।